जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो मुझे आज बताया गया था कि दामोदर अष्टम के पहला श्लोक और नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में बोलने के लिए, तो हम ऐसे ही दामोदर अष्टम की पहले श्लोक नमामेश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुल व्राजमानम यशोदा बीय उखले लब्धमानम परामिष्टम अत्यंत द्रुत गोप्या। नमामी, मैं प्रणाम करता हूं ईश्वरम भगवान श्री कृष्ण को, सच्चिदानंद रूपम जिनकी शरीर नित्य ज्ञान स्वरूप तथा आनंदमय है, लसत कुंडलम देदीप्यमान मकर कुंडल से युक्त गोकुल 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 के गोकुले गोकुल में भ्राजमानम शोभायमान यशोदा भैया माता यशोदा के भय से उखलत उखल से नीचे कूदकर धावमानम दौड़ते हुए परामृष्टम पीछे पकड़ लिया गया अत्यंत अत्यधिक तेजी से द्रुत्या दौड़ कर गोप्या गोपी यशोदा द्वारा। अनुवाद, मैं भगवान दामोदर को प्रणाम करता हूँ जिनके स्वरूप सच्चिदानंदमय है, उनके कानों के कांतिमान मकर कुंडल गले पर क्रिया करते हैं, वह गोकुल में अपने मनमोहक लीलाओं द्वारा शोभायमान होते हैं, माता यशोदा के भय से उखल से नीचे कूदकर भगवान भगने लगे, परंतु गोपी यशोदा ने अत्यधिक तीव्र गति से भगकर उनके पीछे से पकड़ लिया। तो ये दामोदर अष्टम के पहले श्लोक हैं और सनातन गोस्वामी जी हरिभक्ति विलास में इसमें संस्कृत में टीका किए हैं, तो बहुत अच्छे से इसमें बताए हैं। तो सनातन गोस्वामी पहले दामोदर भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके इस दिग्दर्शनी टीका के बारे में उन्हें बोलते हैं। तो और उन्होंने पहले बोलते हैं, मैं सत्यवती मुनि पहले भगवान पास प्रणाम करके मंगल की कामना करते हैं और उस अपने दासो भाव में भगवान के इस दामोदर लीला जो है दामोदर अष्टक के वर्णन करते जा रहे हैं, जिसमें भगवान के रूप गुण लीला तत्व आदि का वर्णन करते हैं। इसके लिए उन्होंने सत्वर्त मुनि दासो भाव में उन्होंने प्रार्थना करते हैं भगवान के चरण कमल। तपले उन्होंने ईश्वर शब्द के वर्णन करते हैं, ईश्वर शब्द तो इसमें बोलते हैं सर्वशक्तिमान जगत के एकमात्र तीन भाग में ईश्वर को बताते हैं, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, जगत के एकमात्र प्रभु हैं और निज प्रभु। तो उन्हें सर्वशक्तिमान इसलिए बोलते हैं कि सर्वशक्तिमान इसको बोलकर उन्हें भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सर्वशक्तिमान, इसलिए इन्होंने तो दामोदर अष्ट की या स्तुति करने के लिए प्रार्थना, तो हमें भगवान सर्वशक्तिमान है इसलिए हमें कोई भी कार्य के लिए, क्योंकि कोई भी कार्य कर सकते हैं। जब जगन्नाथ मंदिर में रामानंद के भाई गोपीनाथ राजा के कुछ पैसा के हेर फेर किए थे, तो उनको मृत्युदंड के लिए उनको ऊपर चढ़ा दिया था और उसको तलवार वगैरह लग के उसको गिराने वाले थे, बार बार महापुरु के पास आए कि प्रभु ये तो आपके लग है उसको बचाइए। तो आखिर में चैतन्य महाप्रभु बोलते, मेरे पास की बात है, आप जगन्नाथ के पास जाओ, कर्तुम अकर्तुम सर्व करने में समर्थ भगवान है इसलिए सर्वशक्तिमान। तो ये भगवान के एक अर्थ करते, ईश्वर के एक अर्थ करते सर्वशक्तिमान है। तो तो सभी कार्य करने के लिए समर्थ है। इसलिए हम भी कोई भी कार्य करते हैं तो इसलिए उनसे प्रार्थना वंदना यदि स्तुति करते हैं तो इसके लिए ये उनको ये कार्यों को पूर्ण करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए इसलिए भगवान के एक अर्थ सर्वशक्तिमान जगत के एकमात्र प्रभु ये भगवान के सर्वसिद्धता सर्वोपरि सत्ता को दर्शाते हैं कि भगवान सर्वोपरि है। भगवान श्री कृष्ण ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर्गम सर्व कारण कलम तो जगत की एकमात्र स्वामी चैतन्य चरितामृत में आता है अकेला ईश्वर कृष्ण और सब भित्त जारे जैसे नाचा ऐसे ही तो इच्छे करे नित्य। तो इसमें भगवान जगत की एकमात्र स्वामी बजेंद्रनंदन श्याम सुंदर है अकेला ईश्वर कृष्ण और सभी उनके दास दासों के दास है। जगत को जैसे नचाने चाहते सभी लोग ऐसे नित्य करते हैं तो जगत की एकमात्र प्रभु स्वामी है तो उनको उन्होंने प्रणाम करते हैं उनको सर्वसिद्धता या सर्वसिद्धता एवं या सर्वश्रेष्ठता को दर्शाने के लिए उनको वंदना करते हैं और निज प्रभु ये भक्ति भक्ति में यह अर्थ है कि वह भक्ति भाव का प्रकट करता है। निज प्रभु भगवान मेरा प्रभु है यह अपना पन ज्यादा है निज प्रभु तो भगवान को तीन ये में करते हैं सर्वशक्तिमान जगत के एकमात्र स्वामी और निज प्रभु। सनातन गोस्वामी जी यही भक्त ईश्वर की यही व्याख्या करते हैं जगत की एकमात्र प्रभु और निज प्रभु। तो भगवान हमेशा चाहते हैं कि मुझे सर्वशक्तिमान माने इतना आसन पसंद नहीं करते हैं मुझे जगत के एकमात्र प्रभु ये माने इससे भी नहीं निज प्रभु जब मानते हैं भगवान चाहते हैं कि मुझे अपना बना ले मुझे दूर दूर के प्रभु प्रभु ऐसे क्यों करते हैं अपना बना लगे मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति यही भावे जय मोरे करे शुद्ध भक्ति मेरा पुत्र है मेरी पुत्र है मेरा सखा है मेरा प्राणपति है यही भावे इसी भाव से जो शुद्ध भक्ति करते हैं। और क्या बोलते हैं भगवान आगे जाके अपने को बड़े मानते हैं मुझे बराबर मानते हैं या छोटे मानते हैं इसी भाव से मैं इनका अधीन होता हूं। तो इसमें जो तीन शब्द है इसमें निज प्रभु जो है ये सबसे भगवान के बहुत प्रिय लगने वाले हैं। गोकुल में लोग निज प्रभु निज मित्र निज पुत्र निज सखा निज प्राणपति ऐसे मानते थे। और रामानंद राय को भी महाप्रभु जब पूछते रहे बोलते गया नहीं ये बाह्य है चार वर्त वाला बाह्य है फिर दासभाव शांत भाव दासभाव जब आया बोला हाय हाय और कुछ है। जब इस निज प्रभु के रूप में जब उन्होंने बताया कि साक्षरस जो है सबसे श्रेष्ठ बोले हाँ ये उत्तम है बाशल रस ये भी उत्तम है बोले ये भी उत्तम है और जब भी बोले कि नहीं कांता प्रेम सर्वसाध प्रेम साधार बोला ये उत्तम है। इसी प्रकार वो चाहते हैं ये नहीं चाहते कि हमसे दूर भागा दे अपना होना चाहते हैं। और इसमें ईश्वर शब्द आए हैं ईश्वर शब्द बोलते हैं जो है सच्चिदानंद सच्चिदानंद शब्द जो है सचित आनंद भगवान के स्वरूप नवामी शरण सच्चिदानंद रूपम तब भगवान के शरीर सत और चित और आनंदमय है। तो इसमें भगवान के सर्वोच्च सत्ता को दर्शाते हैं भगवान की शरीर हमारा जैसे शरीर नहीं है सचित आनंद। इसके बाद भगवान के कानों के जो कुंडल है इसके बाद है लसत कुंडलम तो भगवान जो उनके कानों में जो आभूषण है वो यशोदा की भैंसिया जब खेलते रहते भगवान वो दुलायमान होते रहते भगवान के गालों को स्पर्श करते हैं चूमते रहते हैं और उनके भगवान के गान के जो भी वो भाग रहा है लेकिन कुंडल जैसे लग रहा है खेल रहा है भगवान के कान में। इसलिए भगवान का गाल को बार बार चूमते हैं और इसमें बोलते हैं इसमें कुंडल की शोभा ज्यादा हुआ ऐसे नहीं कुंडल के कारण भगवान की लसत कुंडलम भगवान की शोभा ये नहीं हुआ ये कुंडल भगवान के लिए कुंडल की शोभा ज्यादा हो, क्योंकि भगवान की दिव्य तेज, भगवान की माधुर्य सौंदर्यों को देखकर को उससे जो भी उनके साथ लग जाते हैं वही सुंदर हो जाते हैं। भक्त भी जब भगवान से जुड़ जाते हैं तब इनकी शोभा वृद्धि होती है, उनकी यश मान रूप सब कुछ हो जाते हैं। इसलिए कुंडल की शोभा बढ़ते हैं। सनातन गोस्वामी बोलते हैं, भूषण भूषण रंग ताहे ललित त्रिभंग। सनातन गोस्वामी दूसरे जगह पुष्टि करते हैं कि भूषण के भी भूषण के भी भूषण अंग, भूषण के भी सौंदर्य भगवान के जब भगवान में जुड़ जाते हैं उन भूषण के भी भूषण अंग बढ़ जाते हैं, उनके सौंदर्य वृद्धि होते हैं। तो ये भगवान की सौंदर्य है। तो इसलिए और बताते हैं आगे जाके, भगवान इतनी सौंदर्य है, इतनी माधुरी, इतनी आकर्षक है, लक्ष्मी कांत अवतारे रहने मन लक्ष्मी आदि नारीगणेर करे आकर्षण। तो भगवान की सौंदर्य को वर्णन करते हुए बताती हैं मथुरा की, मथुरा में जब गई तो वो गोपी लोग बताती हैं कि तार साक्षी शैरमा नारायणेर प्रियतमा पतिव्रता गणेर उद्देश्य तिह से माधुर्य लोभे सारी सब काम भोगे व्रत करी करिल तपस्या। तो मथुरा में जब भगवान भ्रमण कर रहे थे, भगवान के माधुर्य सौंदर्य को देखकर एक तो गोपी की सराहना किए, बोलते कौन तप कोइलो गोपीगण, कौन सा ऐसे तप की है गोपी लोग जो कृष्ण के इस माधुर्य का दर्शन करने का यशदा मैया जो गोपी लोग इतने सौभाग्य प्राप्त, कौन सा तप की है ये लोग भगवान के निरंतर। हम लोग तो एक झलक भगवान मथुरा की गली से निकाल रहे, हम लोग एक झलक भगवान के सौंदर्य को दर्शन कर पा रहे हैं। तो मतलब कौन सा तप किया है, और इसके प्रूफ दे रही है मथुरा के लिए कि भगवान के सौंदर्य ज्यादा नारायण से क्यों है। पतिव्रता, तो पतिव्रता शिरोमणि, पतिव्रता के सबसे सबसे टप जो है लक्ष्मी महारानी है, लक्ष्मी देवी है। तो बोलते पतिव्रता शिरोमणि जारे कहे वेदमणि, शास्त्रों में प्रतिपादित करते हैं, वेद बताते हैं कि सबसे पतिव्रता की शिरोमणि जो है लक्ष्मी ठाकुरानी है। तेहो से माधुर्य लोभे, तो लक्ष्मी ठाकुरानी उस माधुर्य भगवान की श्याम सुंदर के माधुर्य के लोभ में आकर व्रत करके तपस्या कर रही है, सारी सब कामों भगे वो वैकंठ की जितनी ऐश्वर्य है सभी ऐश्वर्य को छोड़कर भय श्याम सुंदर की माधुर्यों को, इनकी माधुर्य को आस्वादन के लिए तप कर रही है अभी तक बेलवन में। तो ये बताते हैं कि भगवान की जो सौंदर्य है ना लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत अवतारे रहने मन, तो जितने भगवान के अवतार है उनको भी मन हरण करते हैं। तो आगे जाके कविराज गोस्वामी बताते हैं कि आपुनी माधुर्य हरे आपनार मन, आपुनी आपुनी चाहे करिते आलिंगन। वो छोड़ दीजिए नारायण, छोड़ दीजिए दूसरा गोपी, छोड़ दीजिए, अपना माधुर्य से अपना भी मन हरण कर लेते हैं, आपने आपने स्वयं को आलिंगन करने चाहते, ऐसी इनकी सौंदर्य है। तो भगवान ब्रज में जन्म लेकर इस ब्रज में आकर ब्रज के जितनी भी ब्रज भूमि है, ब्रज की नदी है, मनुष्य है, पशु, सबके मन को आकर्षण करे। स्तवर जंगम सबर हरे मार्च हरे चित्त मन। तो केवल भगवान की सौंदर्य मनुष्य नहीं, गोपी लोग नहीं, स्थावर जंगम जो पत्थर है वो भी पिघल जाते थे, वृक्ष आदि उनको फल गिराते थे और फूल गिराते थे, और चैतन्य महापुरुष जब आते मधु गिराते थे। तो इसी प्रकार वो बता रहे कि स्थावर जंगम सबको भगवान की सौंदर्य एक अद्भुत है। पशु पशु से आकर्षण होते हैं, पशु मनुष्य से आकर्षण नहीं हो सकते, मनुष्य कितना भी देवी जैसे सुंदरी आ जाए कोई पशु उसमें आकर्षण नहीं हो सकते हैं, मनुष्य मनुष्य का आकर्षण होता है, लेकिन स्थावर जंगम सबको मन को भगवान आकर्षण करते हैं। अब सीरिया जो भी है, अब ब्रज की सभी लोग हैरान हैं, सभी लोग आके खड़े होकर एक चाक आंखों से भगवान की सौंदर्य का दर्शन करते, इसलिए सभी का शोभा बढ़ाया भगवान। ब्रजभूमि की, इधर की पशु पक्षी जितनी है, गोपी है, नदी है, सबकी शोभा भगवान के लिए बड़ा, भगवान है इसलिए सब शोभायमान है। इसी प्रकार जो गोपी उनको, तो वो भाग रहे थे उखल में, वो जब उनको छोड़ के दामोदर लीला में, वो दामबंदन लीला में उसमें पूरा विस्तार से नौ अध्याय में बताए हैं कि भगवान मटका फोड़ के जाकर, जो मक्खन रखा हुआ तो उस कमरे में जाकर मक्खन अपने थोड़ा खाए और छिका से उसको लेकर बैठे बैठे मक्खन को बांट रहे थे। तो यशोदा मैया जब आई, दूध उफान रहे थे, उसको एक चूल्हा से उतार के आ गई, आके देखे कृष्ण नहीं है, मटका फटा हुआ है, तो उनके चरण की छाप देखकर जब गई तो जाके जहां पे भंडार घर है उसमें, और भगवान देख रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, डर था, डरा हुआ था। इसी समय यशोदा मैया आए तो उसे डर के, यही बताते हैं कुछ जो उखल उल्टा करके बैठे हुए थे, मक्खन को बांट रहे थे, तीसरी में कूदकर तुरंत भागने लगे। और गोप्या दुरत्य, बहुत जल्दी तेजी से गोपी ने यशोदा, गोपी फिर गोपी शब्द के सारा गोपियों को शोभा बढ़ाने के लिए गोपी की प्रतिनिधि के रूप में इस यशोदा गोपी रूप इसमें गोपी शब्द आया है। तो यशोदा मैया ने बहुत तेजी गति से जाकर भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लिया, पीछे से जाके भाग रहे थे, पीछे से बच्चे को पकड़ लिया तेजी से। यही ये पहला श्लोक का प्रकरण सनातन गोस्वामी करते हैं, और हम अभी जाएंगे श्रीमद आशीर्वाद प्रेम अवतार श्री नरोत्तम दास ठाकुर की आज त्रिभाव तिथि है, अलौकिक इनकी कथा, तो एक घंटे 25-30 मिनट में तो कुछ नहीं है, तो बहुत लंबी कथा उनकी है, बहुत बहुत बुरी बुरी लिखा गया है उनके बारे में, अद्भुत है। एक बार की बात है, महाप्रभु जी सन्यास लेके जब 5 साल बाद बंगाल आए, वृंदावन आने के लिए कानाई नाथशाला गए, कानाई नाथशाला भक्तों के साथ, लाखों भक्तों के साथ जाके कानाई नाथशाला पहुंचे, महाप्रभु कीर्तन में भाव विभोर होके मूर्छित हो गए और नरोत्तम शब्द बताए, तो एक दूसरे के मुख को देखने लगे, प्रभु इधर तो कोई नरोत्तम तो है नहीं, किसको बुला रहे, किसको पुकार रहे, मूर्छित हो गए, महापुरुष का चेतना नहीं आ रहे हैं, नित्यानंद प्रभु सभी भक्त लोग बहुत ज्यादा समय हो गया महापुरुष मूर्छित होके है, सभी की चिंता हुए कि ये कानन नरसला आके महापुरुष को हम लोग घुमा, महापुरुष हम इससे चले गए क्या, रोने लगे सब भक्त लोग। तभी नित्यानंद प्रभु सोचकर जगन्नाथ 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 महापुरुष के कान में बोलने लगे, महापुरुष चेतना वापस आए और महापुरुष उठे और बोले चलो जगन्नाथपुरी जाऊंगा, जगन्नाथ लौट जाऊंगा। तो इसके बाद भक्त लोग ने पूछा, प्रभु आप नरोत्तम तो कोई नहीं, नरोत्तम के नाम क्यों नहीं लिया? तो महाप्रभु घर से ज्यादा दूर नहीं है, उधर से पद्मा नदी की ओर चले, गड़ेरहाट नरोत्तम की जो क्षेत्र है गड़ेरहाट है, गड़ेरहाट नरोत्तम की ओर पद्मा नदी की ओर चले, तो गंगा गंगा जी जो है वो जहां पे कनैनाथशाला से आगे जाके एक ब्रांच नवद्वीप की ओर आते, जो मेन ब्रांच है चले जाते बांग्लादेश में, उसको पद्मा नदी हो जाते, उसके बाद में से एक ब्रांच जब आते नवद्वीप में, एक गंगा इधर आ गए, और जो मेन ब्रांच है ये गंगा नदी है, ये जो बिहार से काशी से गए हैं ये गंगा ही है, मेन ब्रांच जो है उधर चले गए, उसलिए उसको पद्मा नदी बोलते हैं। ज्यादा कनैनाथशाला से उनकी नरोत्तम दास ठाकुर घर ज्यादा दूर नहीं है, बांग्लादेश में है। तो गड़ेरहाट में गए जाकर इस पद्मानंद के दोनों चौर की शोभा को दर्शन कर महापुरुष भाव हो गए और उधर कीर्तन किए, तो कीर्तन करते करते महापुरुष भाव विभोर हो गए। नित्यानंद प्रभु उनसे पूछे, नरोत्तम नरोत्तम आप क्यों बोलते हैं बार बार? तो बोलते हैं कि देखो श्रीपाद, आप चले जाने के बाद प्रेम भी धरती से चला जाएगा, मेरी इच्छा है कि मैं प्रेम और कुछ दिन इस धरती में रखूं, इसलिए कुछ प्रेम जन्म कराना चाहता हूं। आपने मेरे साथ जगन्नाथपुरी जाती हूं जितना रोया है उस वो केवल आपकी आंखों के जल नहीं था, वो तो प्रेम था। मैं इस प्रेम को इकट्ठा करके रखा हूं, बांध के रखा हूं इकट्ठा करके, इस प्रेम को मैं कहीं पे रखने चाहता हूं और प्रेम जन्म कराना चाहता हूं। बोला नरोत्तम कौन है, किसको देंगे उस प्रेम को? वो तो नरोत्तम, बोला उसको तो जन्म हुआ ही नहीं अभी तक, तो किसको देंगे प्रेम? तो बोला हम तो अभी प्रेम किसी को रखने चाहता हूं। तो पद्मा नदी को बुलाकर महाप्रभु ने देवी के रूप में, पद्मा देवी के रूप में आई और महाप्रभु को प्रेम दिए। तो प्रेम देने से कोई वर्षा नहीं, कुछ नहीं, ऐसे बाहर आ गया घर के आसपास, नदी के आसपास सभी डुबो दिया, तोड़ फाड़ करने सब ले गए। तो महाप्रभु देखिए तो उत्पात होने शुरू करेगा। तो पद्मानंद जी को बोले कि आप थोड़ा ठहरो, इसके प्रेम को लेकर तो धारण करो और नरोत्तम रूपी पात्र को इस प्रेम को दे देना। तो पद्मा जी महापुरुष से पूछे हमें कैसे पता कैसे लगेगा नरोत्तम कौन है? बोला आपके इस जल में जब प्रवेश करेगा आपको एक रोमांच आ जाएगा आपके शरीर में, तभी आप समझ जाना कि ये नरोत्तम है, उनको इस प्रेम को दे देना। तो ऐसे ही उनका नाम कृष्णानंद मजुमदार है, उनके पिताजी का नाम उधर के जमींदार थे, पूरे राजा के जैसे बहुत बड़े इसमें थे, उनके पुत्र संतान नहीं था, भगवान के लिए आराधना किए, नारायण की आराधना किए, तो उनके नारायण उनकी माँ के नाम है, उनके गर्भ संचार हुआ, उनके माघ पूर्णिमा के दिन नरोत्तम दास ठाकुर के जन्म है। और तब से जब अन्ना प्राशन होते हैं, पहले दिन उनको अन्न दिया जाता है, उसी समय उनको अन्न दे रहे थे, बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया, जमींदार है और तो बहुत लंबा कथा है, जन्म लेने के बाद भी बहुत दिन तक बहुत बड़े फेस्टिवल चलते रहे। तो इसमें जब पहले मुख में अन्न डाला, घुमा लिया, फेर दिया, घुमा लिया, फेर दिया, घुमा लिया, ले ही नहीं रहे, तो वो अन्न ग्रहण नहीं कर रहे थे। कोई एक व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, वो बताया कि महापुरुष ला के दिखाओ, देखो। तब जब खीर बना के उनको दिया, तुरंत खाए, तब से उनके पिताजी बता दिया कि इनको महाप्रसाद के अलावा कुछ नहीं देना। तो इन्होंने अन्न महाप्रसाद के अलावा कभी कुछ ग्रहण नहीं किया। ऐसे प्रकार उन्होंने 12 साल हो गया, माता पिता बड़े अशक्त थे, बहुत कुछ अध्ययन किए और संसार में तो उनका विरक्ति थे। तो इसी समय एक दिन नित्यानंद प्रभु बताए कि देखो बापू बेटा, आप तुम्हारा ये संसार सिन्हों में बंध जाओगे, तुम्हारा माता पिता जी सोच रहे थे कि शादी आगे शादी वगैरह कराने के लिए, तो फट जाओगे, अभी आप निकलो घर से शादी करने से पहले। इसलिए अच्छा, शादी करने से पहले ब्रह्मचर्य यदि होना है तो शादी करने से पहले निकलना चाहिए, शादी करके फिर तंग करना ठीक नहीं है, जो करे पहले से डिसाइड करो क्या करना है, बड़े 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 घर का लड़का हो, कुछ भी हो, वो बहुत बड़े घर के लड़का है। तो उन्होंने ऐसे सपनों देखा और बोले कि आपके लिए महाप्रभु पद्मानदी में प्रेम रखा है, अभी भी जाएंगे जहां पे एक तमाल वृक्ष है, बंगाल अद्भुत है, वह तमाल वृक्ष नहीं है लेकिन कोई कई जगह नवद्वीप धाम में कोई कई जगह तमाल वृक्ष मिलेगा, जहां भक्ति आचार्य लोग थे सब जगह तमाल वृक्ष मिलते हैं। तो वो तमाल वृक्ष अभी भी है जहां प्रेम तोली बोलते हैं, नदी थोड़ा दूर चले गए पद्मा नदी उधर से, तो प्रेम तोली है, तो आप जाके वहां पर स्नान करो तो आपके लिए प्रेम रखा। तो उन्होंने सुबह सुबह उठा, किसी को बोला नहीं, 3 बजे उठा और चल दिए पद्मा की ओर। राजा के लड़के हैं, कभी अकेला कहीं पे नहीं जाते हैं, वो चले गए जाके नदी में प्रवेश करते, पद्मा नदी समझ गई तो देवी रूप में आई और उन्हें प्रेम दिया। बोले प्रेम लेके क्या करूं, तो उन्होंने पी लिया, पीने के बाद उनका थोड़ा सांवला शरीर था, तुरंत गौर वर्ण हो गया और प्रेम के विकार साथ साथ प्रेम अष्ट सत्य विकार आ गया, रोमांचित कंप रोना, मूर्छित हो जाना, बार बार ऐसे उछालना, नित्य करना, ऐसे प्रेम आ गए। तो ऐसे पद्मा नदी के तट पे आके पड़ा रहा प्रेम में विभोर होकर। घर पे कहाँ गया ढूंढते 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 कोई देखा एक लड़के है, आके माता पिता भी पागल लेनी जैसे, माता तो दौड़ के आके आंगन में गिर पड़ी मूर्छित होके, बाल पूरा फैल गए, तो सभी लोग आए आके पहचान नहीं पाते। प्रेम, प्रेम से कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। तो फिर उन्होंने बहुत शांत ये करके उनको घर पे ले गया, तो रोने लगे, कोई बोलता है अकेला बच्चे आ गया, भूत लग गया, प्रेत लग गया, देव देव के आविष्ट हो गया। तो उनके बाद में बस उसको ठीक करने के लिए कुछ बताए थे, एक पशु मारना, मार उसके से घी बनाना उसको लगाना है। तो उन्होंने मना किया कि पिताजी ऐसे करोगे तो मेरा बीमार और ज्यादा होगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर कुछ दिन बाद में इसको शांत करके रखे। तब उन्हें जाने के लिए कोई चांस नहीं मिल रहे थे, जाने के लिए चांस ही नहीं मिल रहा था। तो इसमें एक दिन एक मुस्लिम, उनके तो जमींदार मुस्लिम सरकार के अंडर में थे, तो उन्हें एक बार बुलाया नरोत्तम को, तो उनके माता जाने नहीं देते नरोत्तम, लेकिन नहीं उसमें जाने से बहुत फायदा होगा, उसको लोभ दिखाया, ये भगवान की सब चाल है। तो आगे मैं बताया अकर्तुम अकर्तुम, आपकी विचार है तो भगवान कैसे न कैसे। रघुनाथ दास गोस्वामी को बताया कि सही छल सही कल कृष्ण स्पूर्वे, तुम्हारे कृष्ण कृपा जार तार के रखते पारे, बोला वो छल आपको तो छोड़ नहीं रहा है, आप जब निकलोगे उसी छल कृष्ण आपको स्मरण कराया कराएगा, और कृष्ण की जिस पर कृपा है कौन उसको रख सकते हैं। तो ये उसको छल हुआ, इधर जाने नहीं देंगे, ये सरकार अधिकारी है। तो उनका पिताजी बोला नहीं ठीक जाने दो। इसी समय कोई सिक्योरिटी के साथ उनको भी भेज दिए, कोई लोगों को भेज दिया, रात को उन्होंने उठा और छुप के भागा। तो आके उनके पिताजी माताजी को जब खबर दिए, वो तो एक्चुअली डरी हुई थी माताजी इसके भाग जाएगा लड़का, लेकिन जब ही उनकी शंका थी पूरा हो गया, तुरंत आंगन में आके गिर पड़ी और भाग गया सारी, और पैसा अनाउंस कर दे कि इतना इतना आपको बख्शीश पैसा दे दूंगा, हजार हजार लाख रुपए दे दूंगा, आप उनको वापस लाओ। चारों ओर से लोभ से लोग लगे और नरोत्तम भागने लगे, पीछे की ओर देखते हैं और भागते हैं, भागते भागते वो माँ सोच रही है ये राजकुमार है, कभी नंगा पैर में चला नहीं, कभी भूख लगते तो कहाँ मांग के खाएगा। माता आप जानते हैं माता के हमेशा सोच रहते, वृंदावन में आ जाते फिर भी घर में बच्चे हैं तो उसकी सोच रहते पड़े रहते। जैसे माँ सोच रही है क्या करेगा, कहाँ से मांग के खाएगा, कैसे जिएगा, कभी चला नहीं। और नरोत्तम दास ठाकुर ये वृंदावन की ओर भागे, खाने का कोई कोशिश नहीं, कोई चेष्टा नहीं है, तीन तीन दिन बाद कभी कभी कुछ खाते थे। ऐसे चलते चलते उनकी फफोला हो गया, चल नहीं पा रहे, शरीर दर्द हो गया, फफोला पड़ गई, तो एकदम थका मंदे, मतलब पूरी कोशिश लगाए चलने के लिए, चल नहीं पा रहे थे। वो बहुत दुखी होकर वृक्ष के नीचे, इतनी थका मंदा थे, खाया पिया नहीं, चला है कभी, चलने का आदत नहीं है। तो जाके एक वृक्ष के नीचे सो गए थका मंदा, और रो रहे थे कि मेरा वृंदावन जाना होगा कि नहीं, ऐसे रो रहे थे। तब महाप्रभु जी एक लोटा दूध लेके आ गए, हे नरोत्तम उठो उठो इस दूध पी लो। तो इतनी थके थे, इतनी थके थे, महाप्रभु आए फिर भी जगा नहीं, फिर रूप सनातन स्वप्न में आए, एकदम तेज तेज निकल रहे, उनके चिन्ह एकदम चमक रहे हैं, दोनों भाई आके उनके, वो भी स्वप्न में, एक्चुअली रूप सनातन जा चुके थे। अके नरोत्तम उठो, तुम कैसे सो रहे हो, महाप्रभु लगे दूध दे दिया, आप आपको पता नहीं है, आप जगा नहीं, इतनी इतने थके हो, इतने सो रहे हो आप। तभी नरोत्तम जी बहुत उन्होंने धक्का दिए, उठे और दोनों तीनों चले गए, नरोत्तम रूप सनातन है महाप्रभु पहले ही चले गए। इसमें बहुत रोए और उन्होंने रूप सनातन बताया कि दूध पी लो, ये दूध पीने से तुम्हारा पूरा ये अमृत है। तो रूप सनातन बताए थे कि तुम दूध पीने से तुम्हारा तबियत पूरा ठीक हो जाएगा, कोई दर्द है फफोला सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो महाप्रभु उन्होंने दूध पिए, दूध पीने के बाद वो तो रोए, पहले महाप्रभु आ गए थे, रूप सनातन आए, हम किसी को साक्षात नहीं कर पाए, दूध पी लिया, पीने के बाद उनका तबियत पूरा ठीक हो गया। तो फिर चले, चलते चलते काशी में आके फिर वृंदावन आए, जन्मस्थान दर्शन काशी, वो विश्राम घाट में पड़े हुए थे, उन्होंने सुनाई दिया कि रूप सनातन नहीं है, क्या किस लिए जाऊ, रोते रोते पड़े हुए थे। जीव गोस्वामी को रूप सनातन फिर स्वप्न दिया, बोले एक भक्त आया है, एक वैष्णव आया है, उनके लेके आओ, अपने पास में रखो और लोकनाथ गोस्वामी से उनके दीक्षा दिलाना। जीव गोस्वामी लोग भेज कर उनको लाए, जीव गोस्वामी चरण में उनके शरण हुआ और लोकनाथ गोस्वामी के पास उनके दीक्षा लेना है। इन्होंने उनका अध्ययन करते रहे, तीन तीन मित्र हैं, ये तीनों महापुरुष का तीनों प्रेम अवतार है। ये नित्यानंद प्रभु ने, तुम जब रोए थे उसमें बांधा हुआ था तुम्हारा प्रेम को, तो आंखों का जल नहीं था, ये तो प्रेम ही था। वो प्रेम नित्यानंद प्रभु नरोत्तम दास ठाकुर है, श्रीनिवास आचार्य महाप्रभु की प्रेम अवतार है, और अद्वैत आचार्य की शमानंद प्रभु है। ये तीनों प्रेम अवतार है। इसका बहुत लंबा कथा है, कहां समय है, क्यों महाप्रभु ऐसे प्रेम जन्म फिर कराने चाहे। अद्वैत आचार्य पहले एक बार महाप्रभु नवद्वीप में रहते मायावत का प्रचार कर रहे थे, फिर महाप्रभु चले जाने के बाद मायावत प्रचार कर रहे थे, महाप्रभु गुस्सा होके फिर प्रेम प्रकट करके वो श्रीनिवास के लिए अपना प्रेम प्रकट किया। इसी प्रकार उन्होंने रहे, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी की प्रतिज्ञा थे कि मैं डिसाइपल स्वीकार नहीं करूंगा, और उनको आदेश हुआ कि आप लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेना है। अभी दोनों गुरु और शिष्य के चैलेंज, गुरु मैं दीक्षा नहीं दूंगा, और उनको बोले आपसे उनको से दीक्षा लेना है। कोई भी सेवा करते थे, फूल फूल उठाते थे, नहीं इसको नहीं करना है छोड़ देते थे, झाड़ू लगाना है नहीं इसको नहीं करना है, कुछ भी दूसरा सेवा, पानी लाना, बोला नहीं इसको नहीं करना है। लेकिन इसका देखिए भक्तों के भाव क्या होते हैं, भक्तों नेगेटिव भाव नहीं लेना चाहिए कभी। हम हमेशा कुछ भी हो चाहे नहीं होने चाहे हम नेगेटिव भाव लेते। उन्होंने क्या भाव लेते, वो भाव लेते मैं इस सेवा करने का योग्य नहीं, उसके नीचे करता है, उसे करते बल मना करते बोलता है ये भी मैं करने के योग्य नहीं, उसके नीचे करते हैं, उसे करने ये करने का भी योग्यता नहीं, इसके नीचे करते हैं। नेगेटिव भाव नहीं, वो सोचते कि मैं इसे करने का योग्य नहीं है मैं, तभी और कोई सेवा उनको नहीं दिया। दूर दूर से उनके परिक्रमा, उनकी कुटिया के परिक्रमा करते थे, दंडवत करते थे, लेकिन ये बहुत करेक्ट थे, जानते ब्रज के संत बहुत करेक्ट होते हैं, अपने मायने विनम्र तो बहुत है, लेकिन आपने जब अपने ग्लोरी है अपना ये है बहुत करक है, बहुत करक, अपने भजन के लिए, खाने पीने के लिए, पहनने के लिए बहुत बहुत एकदम टाइट, आप कितना रो पियो नहीं वो अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। तब ऐसे हुआ उनको सोच जाते थे, जहां पे वो सोच को उठा के फेंकते थे उस जगह को सफाई करके रखते थे, और हाथ धोने के लिए अच्छे मिट्टी कंकर आदि निकाल के मिट्टी ठीक करके रखते थे, हर दिन ऐसे करते थे। लेकिन गोस्वामी को पता भी चला, लेकिन गोस्वामी अभी शर्म के मारे, लोकनाथ गोस्वामी जब क्या करे, वो बड़े दुखी थे, यदि कोई ब्रजवासी करते हैं ऐसे कार्य तो अनर्थ हो जाएगा, क्या करूं, और इसे गंदे बात किसो मैं पूछूं, बड़े परेशान में फंस गए। तो ऐसे सोचते लगभग एक साल तक करने के बाद एक दिन एक उपाय सोच ले कि अच्छा मैं तो सोच करते आऊंगा, मैं छुप के रहूंगा, एक दिन हो गया ऐसे सोच सोच करके वृक्ष के नीचे छुपा के रहे, छुप के रहे, तुरंत उससे नरोत्तम दास ठाकुर से पहले जाके वो वृक्ष के नीचे रहते थे छुप के, और उस झाड़ू से जो झाड़ू से छापाई करते थे उसे हृदय में धारण करते थे, बोलते मैं राजकुमार हूं, शायद गुरुजी मुझे कृपा नहीं, मेरे अंदर मिथ्या अहंकार, ये राजा हूं इसके अहंकार है, उसको धारण करते थे। तो वो वृक्ष के नीचे से रखा, बोला कौन है कौन है, हस्त पकड़ लिया चोर, एक साल बाद पकड़ लिया चोर, पकड़ लिया तो बोला मैं नरोत्तम हूं, तू ऐसे काम कर रहा है, तू राजकुमार है, तू ऐसे कर करना, पूरा उनका प्रतिज्ञा, उनका धैर्य, उनका सारा जिंदगी व्रत तुरंत पानी में पिघल गया, उनकी आंखों से आंसू आ गया, इतनी बड़े राजकुमार होकर तू ऐसे कार्य कर रहा है। तो उसके बाद तुरंत उन्हें खुश होकर बोला ठीक है, हाथ में मिट्टी लगाए, उसने बोला पानी डाल, पानी डाले, यमुना में स्नान करके मंत्र दे दिया, फिर साधन सिखाया। बहुत लंबी कथा है, साधन सिखाया। एक्चुअली गुरु जी मंत्र दीक्षा देते हैं, उसके बाद शिष्य यदि गलती करते हैं तो गुरु जी को लगते हैं, जिसके लिए उन्होंने सिखाया बहुत, एक साल फिर भी सिखा के तो उसके बाद उनको मंत्र दिए। उनके कहा कुंज में नित्य परिकर है, कुंज में सेवा दिए, सेवा मानसिक सेवा करते हुए, इतनी अच्छी मानसिक सेवा करते करते उनके ध्यान लग गया। एक दोपहर में कुंज में उनकी दूध गर्म करने का सेवा उनको दिए गए थे, चंपक लता सखी ने, चंपक मंजरी इनके नाम दिए, और आधारणी स्वयं आके उनके सपने में बताए तू मेरे कुंज में सेवा करना है। तो लोकनाथ गोस्वामी जब सुने बहुत खुश हो गए, बोले ठीक आप ऐसे सेवा करो, तो कुंज में दोपहर में जाके दूध गर्म करने का, दूध उबालने का सेवा दिए गए हैं। तो सेवा करते करते जब लकड़ी से दूध उफान आ गए, तो उसको उतारने के लिए कुछ नहीं देखा, तो हाथ डाल दिया, तो ऐसे सपनों में मानसिक अपने जो स्वरूप है उस स्वरूप में चले गए। अच्छा ध्यान करते हुए मानसिक कोई बैठे कुंज में, लेकिन वो नित्य सेवा में प्रवेश हो गए। प्रवेश होकर जब ये ऐसी सेवा कर रहे, तो अपने स्वरूप में सेवा करते दूध उतार के रखे, तो तुरंत हाथ जल गया, कपड़े लगा के गुरुजी के सामने आए। गुरुजी के सेवा करना है, बहुत शर्मिंदा हो गया, अभी कैसे मैं सेवा करूं, गुरुजी के अभी हाथ में जल गया, ये शरीर में जल गया, वो मंजरी स्वरूप में इन्होंने किए है, लेकिन ये शरीर में जल गया। और जानते बहुत ऐसे होता है, रघुनाथ दास गोस्वामी सपने में मानसिक खीर खाए तो उसको पेट खराब हो गया। तो कपड़े आए तो लोकनाथ गोस्वामी जी बहुत 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 खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। दुखी होने का क्या, तूने इतनी मरे, एक बेटा है, एक शिष्य है, वो इतनी सक्सेसफुल उनकी साधना है, देख के बहुत खुश हो गया। तो इसी प्रकार रघुनाथ उनकी कितनी तीव्र गति से मानसिक रूप उन्होंने सेवा करते थे, बहुत 100,000 नाम ग्रहण करते थे, बहुत ध्यान से उन्होंने पूरा सब कुछ सिखाया है, बहुत सुंदर से बहुत सारे नियम सिखाया है, बहुत लंबा चढ़े हैं। इसलिए हमें ट्रेनिंग की एक वास्तवत, हमारा ट्रेनिंग की बहुत कमी है, कैसे खाना चाहिए, कैसे आचार विचार, कैसे साफ सुथरा रहना, इसके लिए बहुत कमी हमारा में है, हमारे शरीर में। खाने के लिए एक हाथ से खाने से ये भी हमें पता नहीं, दो हाथ से तुरंत हम लोग खाना शुरू कर देते हैं, ग्लास को हमेशा डाइन साइड में रखना चाहिए, नहीं तो सूरा के बराबर होता है। अवसर नहीं, हमेशा सीखना जरूरी है, एक्चुअली ये क्लास की इसके लिए शिक्षा होना चाहिए। हम बहुत जब तब सब कुछ ठीक ठाक करते, बहुत सारे करते हैं, लेकिन हमारा नियम कुछ भी पता नहीं है, हम इतने स्तर में नहीं है, जो रागानुराग स्तर हम नहीं है। देह स्मृति है हमारा, देह स्मृति है तो कैसे हम रागानुराग स्तर में जाएंगे। हम नियम के समय हम बोल देते हम रागानुराग स्तर, इधर भजन के समय कुछ भी नहीं है, नाम लेते रहते तुरंत नींद आ जाती है, क्या भजन रागानुराग स्तर, इतना राग है। तो ये है, इस नियम को सीखना, हम नियम स्तर में है तो हमें नियम सीखना चाहिए। उनको सिखाया पूरा, तो फिर आगा हुआ, उन्होंने बंगाल चले गए, बंगाल जाके प्रचार करने लगे, से विग्रह को प्रकट किया, आगा हुआ सपने आदेश से विग्रह का प्रकाश हुआ। महाप्रभु प्रिया के साथ, महाप्रभु वल्लवी कांतो, कृष्ण राधा, राधा कांतो, राधा रमन, राधा ब्रजमोहन जो वृंदावन में है, ये सी विग्रह प्रिया के साथ उन्होंने अभिषेक करके उन्होंने मनाए उनके घर पे, अपने गांव में ही। उनका बड़े भाई ताऊजी के लड़के थे संतोष दत्त, ये सभी को श्रेणी किया, मंदिर वगैरह बना दी, वो अपने गांव में उनका आज्ञा होता प्रचार करने के लिए, खेतरी उनके गांव है। तो ये अभिषेक में लेकिन गौरंग के मूर्ति बना नहीं पा रहे थे, कितनी बना रहे थे बना ही नहीं पा रहे थे। तभी महापुरुष सपने में आए, बोला आप कितनी कोशिश करो बनेगा नहीं, मेरा विग्रह मैं संन्यास लेने से पहले मेरा विग्रह बनाया था, उसको मैं छुपा के रखा था, आपके गांव के पास में विप्रदास के जो अनाज के गोडाउन है उस गोडाउन में मैं हूं, आप जब उसके लेके आओ। लेकिन उधर कोबड़ा रहता था बहुत बड़े उस महापुरुष के चौकीदारी के लिए, कोई नहीं जा सकता था। नरोत्तम दास ठाकुर गए तो कोई जानी नहीं दे रहे थे, बोले नहीं 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 उस तो हम जा ही नहीं पा रहे, ये कोबरा नहीं कोई कोबरा है उसमें मार खा जाएगा तो नरोत्तम बोला नहीं कुछ नहीं होगा। वो तो गए जाके जाने से वो जानते हैं मालिक जिसको हैंडओवर करना है वो तो आगे हम लोग क्या करेंगे, जैसे जगन्नाथ जी की दारू है वो हैंडओवर करने के बाद तो चले जाते हैं चौकीदार, तो वो चले अंतर्धान हो गया। तो महापुरुष को उठा के लाए और इसे विग्रह ये पूरा महापुरुष के समय सन्नाश से पहले बना हुआ विग्रह था, उस विग्रह इससे विग्रह का अभिषेक हुआ उस जिसमें जिसके कीर्तन में महापुरुष स्वयं प्रकट हुए। ऐसे बहुत सारे लीलाओं करके बहुत अद्भुत प्रचार उन्होंने किया, और जो आप लोग जानते हैं प्रेम उनमें अंदर इतनी उसमें भजन में इतनी प्रेम है। तो इसके बाद उन्होंने आज के दिन उनके गांव में कोई दिन से एक लंबा प्रेम नरोत्तम विलास एक किताब है प्रेम विलास में इनके बारे में है, और उन भक्ति रत्नाकर में भूरी भूरी उनकी गुण है, सेमिनार होना चाहिए इसके बारे में। तो इसमें अपने ठाकुर जी से बहुत सुंदर प्रार्थना महापंचतत्व से प्रार्थना किए, ठाकुर जी से विग्रह से प्रार्थना करके एक भक्तों के साथ राधाकांत और उन्होंने गंगानंद चक्रवर्ती को लेकर बुधिया तेलिया बुधिया जो गोविंद गोविंद कविराज जो भजन गाते हैं भज हो रे मन श्री नंदे नंदन उनके घर पे गांव में आए कीर्तन हुआ। उसके बाद से गंभीला में गए, गंभीला में जाकर उन्होंने बहुत ही प्रार्थना किए, भाव विभोर थे उनकी दशा भगवान के चरण को प्रार्थना करके उन्होंने गंगा स्नान किए। गंगा स्नान में जाके गंगा थोड़े जल में बैठे, बैठने के बाद गंगा नारायण को और उनको दूसरे उसको दोनों को बोले कि मेरे शरीर को गंगा जल से मार्जित करो, मार्जन कर गंगा जल लो और इसे घिसो। घिसते घिसते संगे संगे साथ ही साथ दूध जैसे सफेद होने लगे, बड़ी गलने लगे, गलते 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 जब गलने लगे एक गंगा में एक पूरा लहर एक ऐसी लहर आ गया कि पूरा पूरा डूबा दिए, बस पूरा मिक्स हो गया इनके शरीर। उसी में से कुछ दूध लाकर दूध मिक्सित उनके जो शरीर है उसको लाकर गंभीला में समाधि उनको बनाया। जय श्री नरोत्तम दास ठाकुर के। तो ऐसे इनके नित्यलीला प्रविष्ट हुआ, उनकी इच्छा प्रकट किए, रघुनंदन जी इच्छा प्रकट किए, हरिदास जी सब ऐसे नहीं कि योगी लोग है कि वो यज्ञ करके ऐसे करके अपने समय निर्धारित करके, नहीं भक्तों में भक्ति में भक्ति भक्ति में इतनी शक्ति है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अभी जाना है मुझे, चलो ठीक है चलो, आज बोला हरिदास मैं जाऊंगा कल चला गया। ये भी विचार किए, सबसे पूरा बहुत गंभीर थे बहुत सीरियस थे। तो उस दिन आए गंभीला में और अपने भगवान की महंत के क्या लीला है पता नहीं है, वो इतना खेतरी में छोड़ सकते थे, वो इंडिया में है गंभीला जो है उनकी समाधि जो है दुग्ध समाधि जो है इंडिया में भारत में गंभीला है, मैं तभी तक पहुंचा नहीं, वैष्णव महाराज जी पहुंचे हैं उस स्थान में, मालदा जिला में है गंभीला में, वो उनके घर वो तो बहुत नजदीक है, वो खेतरी से इंडिया के टावर दिखता है। इसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर की आज तरभाप तिथि है, हमें ब्रजमोहन जाना चाहिए और लोग गोकुलानंद में उनकी स्मृति समाधि बनाए हुए हैं प्रार्थना कर सकते हैं। उन्होंने पहले ही वृंदावन रहने का जो योग्यता उन्होंने गौरांग बलित हवे पुला को शरीर उन्होंने प्रार्थना किए हैं। तो इसी प्रकार हम समय की बहुत पाबंदी भी है, समय बहुत कम है तो हम पूरा ही बाईपास किया है कुछ नहीं। तो इस प्रकार कुछ किसी का प्रश्न है उसी है, नहीं तो हम क्लास को समाप्त करते हैं। जय श्री नरोत्तम दास ठाकुर की, पतित पावनिताय गुर सुंदर की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, नितायगुर प्रमणंदी हरि हरि बोल।